आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में आवास संकट बढ़ रहा है, वैसे वैसे अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोग तनाव की स्थिति में पहुंच रहे हैं। ऐसे में होमलेसनेस ऑस्ट्रेलिया और नेशनल अबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर हाउसिंग एसोसिएशन प्रथम राष्ट्र समुदायों के बच्चों वाले परिवारों में बेघर होने की बढ़ती दर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और फंडिंग की मांग कर रहे हैं ताकि अबोरिजिनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हाउसिंग संगठनों को इस संकट से निपटने में मदद मिल सके। बिना घर के पते के आप बैंक खाता नहीं खोल सकते, बिना बैंक खाते के आप नौकरी नहीं पा सकते, ना ही सरकार की ओर से दी जाने वाली आय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें से किसी के बिना आप किराए के लिए किसी संपत्ति का आवेदन तक नहीं कर सकते। जहां एक ओर कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं बेघरी की स्थिति से बाहर निकलना और भी कठिन है। आवास संगठनों का कहना है कि अब प्रथम राष्ट्र समुदायों के बच्चों वाले अधिक से अधिक परिवार बेघर सहायता सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं। होमलेसनेस ऑस्ट्रेलिया की CEO केट कॉल्विन कहती हैं।
There's more people just deeply affected by the housing crisis. So rents just keep rising and rising, and vacancy rates are really low. So it's really hard for people to find a home they can afford in the rental market. And homelessness services are overwhelmed by all the increasing number of people who need help.
National Aboriginal and Torres Strait Islander Housing Association के साथ मिलकर तैयार की गई उनकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 और 2023-24 वित्तीय वर्षों के बीच बेघर सेवाओं का उपयोग करने वाले बच्चों वाले परिवारों की संख्या में 5% तक की वृद्धि हुई है। इस 5% वृद्धि में से 31% इंडिजिनस परिवार थे। इस अवधि के दौरान बेघर सेवाओं ने 24,000 से अधिक इंडिजिनस बच्चों की सहायता की। डैरन स्मिथ अबोरिजिनल हाउसिंग विक्टोरिया के CEO हैं और विक्टोरिया में अबोरिजिनल हाउसिंग एंड होमलेसनेस फोरम के अध्यक्ष भी हैं। वे कहते हैं,
I think the first thing to recognize is that there's a history of exclusion which includes exclusion from housing for Aboriginal people that's gone on generations in this country. Aboriginal people are 15 times more likely to experience homelessness in Victoria, which really relates to that legacy of colonization, dispossession and decades of poultry failure.
पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण बेघर लोगों की सहायता करने वाले संगठन जरूरतमंद परिवारों को मना करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इन 2 वर्षों के दौरान पहली बार सहायता मांगते वक्त पहले से बेघर फर्स्ट नेशंस परिवारों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है और सहायता मिलने के बाद भी बेघर रह जाने वाले लोगों की संख्या में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। केट कॉल्विन कहती हैं कि अस्थिर आवास स्थितियों में बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।
We know that when children are homeless, often they have to move from place to place. You know, there might only be temporary accommodation available for a very short time, and then they have to move somewhere else. Or oftentimes there's not temporary accommodation available at all, and people end up couch surfing, sleeping in cars. You know, sometimes even on the street.
यूरोप न्याय आयोग विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला औपचारिक ट्रूथ टेलिंग जांच आयोग था, जिसका नेतृत्व प्रथम राष्ट्र द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद के जरिए इंडिजिनस समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक और लगातार जारी व्यवस्थागत अन्यायों की जांच करना था। इस जांच का एक मुख्य क्षेत्र बाल संरक्षण रहा। विक्टोरिया में फर्स्ट नेशंस बच्चों के आउट ऑफ होम देखभाल में होने की संभावना 21.7 गुना अधिक है। वहीं फर्स्ट नेशंस युवाओं की कैद दर विक्टोरिया में गैर इंडिजिनस युवाओं की तुलना में 10.4 गुना अधिक है। डैरन स्मिथ कहते हैं कि बेघर होना इन व्यवस्था जनित अन्यायों के कई परिणामों में से सिर्फ एक है।
We know that there's a high proportion of Aboriginal children that are in out-of-home care and involved with the child protection system who are turning up into
homelessness services to access housing support, and we should be able to actually do something that can resolve those issues for those young people, and it's part of preventing the next generation of child immortals.
बच्चों के लिए स्थायी पता ना होना अक्सर स्कूल ना जा पाने का एक बड़ा कारण बनता है. केट कॉल्विन कहती हैं कि जब आवासीय अस्थिरता बचपन या किशोरावस्था में शुरू होती है तो इसके वयस्क जीवन तक बने रहने की संभावना अधिक होती है.
It's very difficult for children to stay connected to their education in that circumstance. Even if they're going to school, they might really struggle to fully participate in the classroom. So it has then often a long-term impact with, you know, adults who are homeless, particularly rough sleeping, often having had their first experience of homelessness as a child. So huge impacts. And, you know, we think that this is such a huge priority for government. We shouldn't have children homeless in Australia. And we really hope that this goes to the top of their priority list.
बेघर होना कई रूपों में सामने आता है. 2021 में खुले में सोने वाले लोग बेघर आबादी का केवल 5% से थोड़ा अधिक हिस्सा थे. हालांकि प्रथम राष्ट्र लोग ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 4% से भी कम हिस्सा हैं, लेकिन वे देश की कुल बेघर आबादी का 28% बनाते हैं. डारेन स्मिथ कहते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही वंचनाओं के कारण कई प्रथम राष्ट्र परिवारों के पास सहारा लेने के लिए कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं होती. बेघर होने के कई कारण होते हैं, जैसे गरीबी, आवास की कमी, घरेलू और पारिवारिक हिंसा और रिश्तों का टूटना. केट कोल्विन कहती हैं कि जब लोग संकट की स्थिति से पहले ही बेघर सेवाओं से संपर्क कर पाते हैं तो उनके वास्तव में बेघर होने की संभावना काफी कम हो जाती है. लेकिन उनके अनुसार समस्या ये है कि इन सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ने के कारण उन लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती जो अब तक संकट में नहीं पहुंचे हैं.
But the problem is that when people come to a homelessness service, they've got so many people who just don't have accommodation that evening that they're sort of triaging the support that's available, and so it does end up going to someone who is in that more immediate and sort of desperate circumstance. But then down the track, the problem is that it's much harder to rehouse people than it is to stop the tenancy breakdowns.
देश भर में आवास आपूर्ति की समस्या के कारण जिन लोगों के पास सुरक्षित नौकरी भी है, वे भी किफायती और उपयुक्त आवास ढूंढने में लगातार कठिनाई महसूस कर रहे हैं. डॉक्टर एरिका मार्टिनो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के सेंटर ऑफ हेल्थ पॉलिसी में विक हेल्थ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं. वे कहती हैं कि किराए पर घर पाने में नस्ल भेद भी एक बड़ी बाधा बन जाता है.
Our work and also, you know, more broad evidence in the sector suggests that racism in the rental market is widespread, but it's often underreported and also extremely hard to prove. And, you know, this can be include being ignored by agents, you know, offered field inspections, asked to pay more rent or much more rent up front to secure the properties. We heard that a lot, that people were had to, you know, offer up to 6 months rent to secure a place. You know, and these practices are essentially, I would say, facilitated by, you know, an unequal power dynamic within the rental system that preferences housing provider rights over tenant rights.
Darren Smith कहते हैं कि कुछ मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंट संभावित किराएदारों को लेकर पूर्व धारणाएं बना लेते हैं और कई बार गैर इंडिजिनस आवेदकों को प्राथमिकता देते हैं.
We certainly see that Aboriginal people don't have the same opportunities that everyone else has. So if there's a choice, Aboriginal people are at the bottom of the list. We do hear stories, particularly for regional areas, about families being knocked for properties, assumptions being made about who the renters are or potential renters are based on their surnames. Even we see discrimination from time to time where people are working for Aboriginal organisations, that there's an assumption around Aboriginality where they don't get the same kind of opportunities to access private rental markets.
अगर विक्टोरिया में बेघर सेवाओं तक पहुंच सकने वाले इंडिजिनस लोगों की दर को राज्य की कुल जनसंख्या पर लागू कर दिया जाए तो ये संख्या लगभग 12 लाख लोगों की होगी. अगर 12 लाख विक्टोरियाई नागरिक बेघर सेवाओं का सहारा ले रहे होते तो संभवतः इसे एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दिया जाता. केट कॉल्विन कहती हैं कि ये संकट जितनी देर तक अनदेखा रहेगा, आगे चल तक उसे सुलझाने में उतना ही अधिक निवेश करना पड़ेगा. हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अधिक घर बनाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन हर प्रकार का आवास हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। सरकार का क्लोजिंग द गैप लक्ष्य ये है कि 2031 तक 88% अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग उपयुक्त आकार वाले आवासों में रह सकें। हालांकि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सरकार इन लक्ष्यों को पाने की दिशा में सही रास्ते पर नहीं पाई गई है। केट कॉल्विन कहती हैं कि अगर सरकार वास्तव में ठोस सुधार देखना चाहती है तो उसे प्रथम राष्ट्र नेतृत्व वाले संगठनों को इस प्रयास की अगुवाई करने का अधिकार देना होगा।
Homelessness Australia is seeking to resolve that by really calling for a change in direction from the government. So we want to see a dedicated First Nations-led housing and homelessness plan to really put Aboriginal and Torres Strait Islander communities in charge of what the solutions are and delivering those resources. Because what we can see is that it hasn't worked when governments have just made decisions for First Nations communities and delivered resources in ways that haven't been successful.
SBS News से सिडनी लैंग की इस खबर को SBS हिंदी से आपके लिए प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।